बुभुत्सताम, ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार एक अंधा पुरुष न देख सकने के कारण दूसरे अंधे को अपना नायक मान लेता है, उसी तरह जो लोग जीवन लक्ष्य को नहीं जानते वे किसी न किसी धूर्त मूढ़ तथा मूर्ख को अपना गुरु बना लेते हैं। किंतु हमारा लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतएव हम आपको अपना गुरु स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप सभी दिशाओं में देखने में समर्थ हैं और सूर्य की तरह सर्वज्ञ हैं। तात्पर्य, अज्ञान में डूबे रहने तथा जीवन लक्ष्य न जानने के कारण बद्ध जीव ऐसा गुरु बनाता है जो शब्दों की जादूगरी जानता हो और ऐसा जादू दिखा सकता हो जो किसी मूर्ख के लिए आश्चर्यजनक हो। कभी कभी मूर्ख व्यक्ति किसी को इसलिए गुरु बना लेता है क्योंकि वो अपनी योग शक्ति से थोड़ा सा सोना भी बनाना जानता है। क्योंकि ऐसे शिष्य के पास अल्प ज्ञान रहता है, अतः वह यह तय नहीं कर पाता कि सोने का बनाना गुरु की कसौटी है या नहीं। क्यों न उन भगवान कृष्ण को गुरु बनाया जाए जिनसे सोने की अनंत खाने उत्पन्न होती हैं। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सोने की सारी खाने भगवान की शक्ति द्वारा उत्पन्न की गई है, अतएव उस जादूगर को क्यों गुरु बनाया जाए जो थोड़ा सा सोना ही बना सकता है। ऐसे गुरु को न वे ही मानते हैं जो अंधे हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य ज्ञात नहीं रहता। किंतु महाराज सत्यव्रत जीवन का लक्ष्य समझते थे, वे भगवान को जानते थे, अतएव उन्होंने भगवान को अपना गुरु बनाया। या तो भगवान या फिर उनका प्रतिनिधि ही गुरु बन सकता है। भगवान कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्तिते। जो भी कोई मेरी शरण में आ जाता है उसे माया के बंधन से छुटकारा मिल सकता है। अतएव वह गुरु का कार्य है कि अपने शिष्य को उपदेश दे कि यदि वह भवबंधन से छूटना चाहता है तो भगवान की शरण में जाए। यही गुरु का लक्षण है। इसी सिद्धांत का उपदेश श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। यारे देख तारे कृष्ण तारे कह कृष्ण उपदेश। दूसरे शब्दों में मनुष्य को वह सलाह दी जाती है कि वह किसी ऐसे को गुरु न बनाए जो भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश का पालन न करता हो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो यहाँ पर इस श्लोक में ये जो श्लोक है जो अध्याय हम जो पढ़ रहे हैं तो भगवान के विविध अवतारों का वर्णन ये परीक्षित महाराज जानना चाहते थे। तो अलग अलग अवतारों के वर्णन के बाद में यहाँ भगवान का मत्स्यावतार का वर्णन दिया है। आप कई ये 50वां श्लोक है, मतलब पिछले उन 50 श्लोक में आप ये मत्स्यावतार का जान चुके हैं कि मत्स्यावतार ऐसे अलग अलग समय में भगवान के ये कब होता है मत्स्यावतार अवतार किस समय में होता है हाँ कौन सा प्रलय चाक्षुष मन्वंतर में ये। पर प्रलय ब्रह्मा की हर रात्रि में होता है अलग अलग तरह के प्रलय होते हैं, तो ब्रह्मा की जो रात्रि के समय में जो होता है ये इनकम्प्लीट प्रलय, पूरी तरह का प्रलय इसे नहीं कहा जाएगा। प्रलय यानी जब पूरे सभी ब्रह्मांड, पूरा जितने ब्रह्मांड है सब भगवान में समा जाए, मतलब महाविष्णु में जब चले जाते हैं, सूक्ष्म रूप में जीव सब चले जाते हैं, पर ये जो प्रलय है ये छोटा प्रलय है, ब्रह्मा की रात्रि के समय में होता है। जैसे पूरा दिन यानी 1000 चतुर्युगी बीत जाता है, उसके बाद में रात्रि का समय आता है ब्रह्मा की, तो वो सोते हैं, तो जो भोर लोग स्वर्ग लोग, तो ये तीन ये लोग जल से निमग्न हो जाते हैं, तो ये अधूरा प्रलय है, पूर्ण प्रलय नहीं है। और तो मतलब मैं थोड़ा प्रलय के बारे में और भी थोड़ा बतलाना चाहूँगा कि पूर्ण प्रलय जब ब्रह्मा का जीवन, मतलब ये हजार हजार चतुर्युगी ऐसे पूरे ब्रह्मा का ऐसा एक दिन होता है, ऐसी रात्रि होती है, ऐसे 365 दिनों में एक वर्ष होता है, तो ऐसे ब्रह्मा के 100 वर्ष की जब आयु पूरी होती है उसमें पूर्ण प्रलय होता है, तब तो पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मलोक तक पूरा भगवान वो समा जाता है। मतलब ये जो जो दृश्यमान चीज़ें हैं वो पहले तो सूर्य बहुत सरल से तपता है, उसके बाद में कई तरह वर्षा इस तरह से होती है, सभी चीज़ें सब आखिर को जा करके सूक्ष्म रूप में बन करके वो प्रकृति जो प्रकृति है उसमें विलीन हो जाती है, और जितने भी जीव हैं अपनी सूक्ष्म इच्छाओं से साथ में सूक्ष्म देह के साथ में, ये भौतिक देह तो यहीं रह जाता है पर जो सूक्ष्म देह है उसके रूप में महाविष्णु में चले जाते हैं, और महाविष्णु में वो विश्राम करते हैं, पर उनके जो मन बुद्धि अहंकार है, उनके जो कर्म है वो उनके साथ में ही रहते हैं, फिर इसी रूप में सृष्टि फिर से होती है। पर ये छोटा सा प्रलय है, तो ये जब प्रलय इसमें दिखलाया गया है कि ये वास्तव में ब्रह्मा की रात्रि के समय नहीं हुआ, पर कभी कभी बीच में ब्रह्मा जी को नींद आती है, तो वो भी एक तरह के नींद के समय भी एक तरह का प्रलय होता है, तो निद्रा में उस समय भी, तो उस समय भी पूर्ण रूप से जल में निमग्न होता है भूर्भुव स्वर्गलोक। और तो इस तरह से एक पहले जो प्रलय हुआ था स्वयंभू मुनि के समय में, तब भी भगवान ने शास्त्रों को बचाया, वो ब्रह्मा जी के समय में तो वो भी ये मत्स्य के रूप में भगवान आए थे स्वयंभू मुनि के समय में। फिर ये छठवां चाक्षुष मन्वंतर में भी जब ब्रह्मा जी को बीच में नींद आई तो वो समय भी प्रलय हुआ, और इसमें महाराज सत्यव्रत कि भगवान ने रक्षा की, अपने जितने भी वेद पुराण जितने भी बीजे हैं और ऋषि मुनि जो थे सप्तर्षि उन सब की भगवान ने रक्षा की, किस रूप में रक्षा की वो आप पढ़ते आए हैं। और यहाँ पर जो प्रार्थना जो हो रही है ये तो ये कौन बोल रहा है, ये श्लोक जो हमने पढ़ा, ये श्लोक जो है ये कौन बतला रहा है, कौन? इसमें कुछ श्लोक पहले यदि आप देखेंगे कि महाराज, तो ये कौन महाराज का है, श्री राजोवाच्य जो 46, तो कौन से राजा बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज भी राजा हैं और ये महाराज सत्यव्रत भी महाराज हैं, तो कौन ये बतला रहे हैं, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं या सत्यव्रत मुनि? हाँ, महाराज सत्यव्रत, ये वो सत्यव्रत मुनि कोई अलग हैं और सत्यव्रत महाराज जो हैं ये अलग हैं। सत्यव्रत मुनि जिन्होंने ये ये दामोदर अष्टक जो लिखा है वो सत्यव्रत मुनि वो अलग हैं, और ये सत्यव्रत महाराज जो हैं ये कोई अलग हैं, तो इन दोनों से आप कन्फ्यूजन मत होइए। तो ये सत्यव्रत महाराज ये श्लोक को बोल रहे हैं और इसमें भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली कि वो भगवान को ही, कि जैसे कि इन्होंने बतलाया है, अनुवाद फिर से आप सुनिए। जिस प्रकार एक अंधा पुरुष न देख सकने के कारण दूसरे अंधे को अपना नायक मान लेता है, तो अंधा व्यक्ति एक अंधा व्यक्ति किसी और दूसरे को अपना नायक बनाएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। जैसे कि भेड़ बकरियां, कभी बकरी को आप नेता बना लो तो बकरी आगे जाती है पर क्या, और जब डिच आती है मतलब पहाड़ पर से जब खाई आती है तो खाई में गिरती है, और दूसरे सभी जितने उसके फॉलोअर हैं उसके पीछे पीछे आने वाले वो भी ये नहीं देखेंगे कि पहले वाली बकरी कहाँ गई, गड्ढे में गिरी, मैं भी गिरूंगी। इसी तरह से अंधा व्यक्ति यानी जो ज्ञान शून्य है, भगवान का जैसे ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, उसे व्यक्ति को यदि हम गुरु बनाएंगे तो हम भी इसी तरह से संसार सागर में गिर पड़ेंगे, संसार से हमारा उद्धार नहीं होगा। तो जो जीवन लक्ष्य को जो नहीं समझता है, ऐसे धूर्त और मूर्ख को अपना गुरु हम जो लोग बना लेते हैं तो हमारा लक्ष्य वास्तव में आत्मज्ञान होना चाहिए, हमारा लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार का क्या मतलब? आप किसे आत्म साक्षात्कार कहेंगे? हाँ, कि हम भगवान के दास हैं। आत्मा जो है भगवान का अंश है, हम भगवान के दास हैं, और भगवान के दास होने के नाते पूर्ण जिनके हम दास हैं उनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, वही हमारी वास्तविक गति है। तो ऐसे इस आत्म साक्षात्कार को जानने के लिए हमें गुरु, उचित गुरु को बनाना जरूरी है। तो हमें जानना चाहिए कि उचित गुरु कौन है, शिष्य के क्या लक्षण है। तो यहाँ वो भगवान को गुरु मान रहे हैं, ये सत्यव्रत महाराज। उन्होंने कहा कि हम आपको अपना गुरु स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप सभी दिशाओं में देखने में समर्थ हैं और सूर्य की तरह सर्वज्ञ हैं। तो इसमें अधिकतर करके आप देखेंगे कि गुरु कौन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, गुरु किसे नहीं बनाना चाहिए, किसे बनाना चाहिए, इस बारे में सत्यव्रत मुनि या सत्यव्रत महाराज भगवान को बतला रहे हैं कि आप ही वास्तविक गुरु हैं। गुरु ने जिनमें क्या क्या लक्षण होना चाहिए, तो इन बातों के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि गुरु के क्या लक्षण हैं, शिष्य के क्या लक्षण हैं, किसे गुरु बनाना चाहिए। तो हम वास्तव में इस मरुस्थल में कई जन्म जन्मांतर से, जैसे कि मछली एक मान लो जलाशय में है, जहाँ पर रेगिस्तान है, रेगिस्तान में एक मछली, एक जलाशय है, जलाशय में एक मछली है। अब उसे जलाशय के बाहर जो रेती है वो सूर्य के उजाले के कारण चमकती हुई चकाचौन करती है। इस चकाचौन के कारण से वो पानी से बाहर निकल करके दूर जाती है कि अरे ये बड़ा अच्छा दृश्य है, बड़े अच्छा है, ये रेत के कण सोने जैसे चमक रहे हैं, मुझे बाहर जाने में थोड़ा आनंद है, सोने का मैं आनंद लूँ। तो वो बाहर निकल करके जाती है और उस चकाचौन में फंस करके वो तड़पती भी है, पर सोचती है आगे और सुख मिलेगा, आगे और ज़्यादा चमक है। तो हम भी संसार की चमक धमक में अपने वास्तविक स्थान से, अपने वास्तविक स्थान यानी भगवान की शरणागति के स्थान से जा करके इस तरह के सांसारिक सुख में डूब रहे हैं, जो कि हमें संसार में तड़पाता है, और हम वास्तव में अपना जीवन गंवा देते हैं। मनुष्य जीवन जो बहुत दुर्लभ है, उसे हम गंवा करके हम संसार की ओर जाते हैं और अपने वास्तविक लक्ष्य यानी भगवान की भक्ति को भुला जाते हैं, भगवान की सेवा को भूल जाते हैं और संसार को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। तो आत्म साक्षात्कार जो ज्ञानी है वो हमें इस दिशा में ले जाता है। तो अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि महाराज सत्यव्रत ने भगवान को ही अपना गुरु माना, तो हम भी क्या भगवान को अपना गुरु बना सकते हैं, या बनाना चाहिए, या उससे कुछ हमें फायदा होगा, या भगवान को गुरु नहीं किसी और योग्य व्यक्ति को गुरु बनाना, मतलब आपका? तो इस बारे में आप क्या बतलाएंगे कि गुरु भगवान को हम बना सकते हैं या नहीं? मतलब यहाँ जैसे कि सत्यव्रत महाराज ने भगवान को ही अपना गुरु माना है, भगवान ने मत्स्यावतार को, मत्स्य जो अवतार हैं वो जब नाव खे रहे थे, आपको पूरा इतिहास मालूम ही है कि छोटी मछली के रूप में आए, छोटी मछली मतलब वो इन पर कृपा करने के लिए, पर वो उन्होंने अपने कि मुझे बचाइए, मुझे कोई दूसरी बड़ी मछली खा जाएगी। फिर उसने बोला कि उन्होंने महाराज ने अपने कमंडलू में रख लिया, क्योंकि स्नान के लिए गए थे, कमंडलू से एकदम पूरा थोड़े समय में भर गया कमंडलू। फिर उन्होंने किसी अपने बड़े पॉट में रखा, वो भी भर गया। फिर बड़े जलाशय में रखा, एक तालाब में रखा, तालाब भी थोड़े समय में भर गया। फिर उन्होंने उसे समुद्र में डाला और समुद्र में भी वो बहुत बड़े हो गए। जब ये देखा तो सत्यव्रत महाराज जान गए कि ये भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, भगवान के अलावा और कोई नहीं है। और फिर उन्होंने अपनी वाणी, उन्होंने भगवान की स्तुति की और भगवान ने उन्हें बतलाया कि 7 दिन के अंदर प्रलय होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक सुदृढ़ नौका बनाओ, नौका को लेकर के आओ, और नौका में सभी तरह के बीज, सभी तरह के वेद शास्त्र वगैरह, और सप्तर्षि ऋषियों को बुलाओ और आप आ जाइए। तो आकर के बैठ गए। जब नौका बहुत डगमगाने लगी तो वासुकी नाग वहाँ आए, और वासुकी नाग से उन्होंने ये मत्स्य भगवान भी आए, उनके सींगों से, मत्स्य भगवान के सींग थे, तो सींग से वासुकी नाग की रस्सी के द्वारा उन्होंने बांधा और नाव को खेते हुए जाते थे, और साथ ही साथ उन्होंने आत्म साक्षात्कार का पूरा उन्हें समझाया वैसे ही। और इस शिक्षा को क्या बोला जाता है, जैसे इस जो मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत महाराज को शिक्षा दी, उसका कुछ नाम है उस शिक्षा का? क्या बतलाया? मतलब ये आत्मशास्त्र की शिक्षा दी है, इसमें कहीं दिया हुआ है कि वो जो शिक्षा है या और सांख्य सांख्य योग की शिक्षा दी, और सांख्य योग की शिक्षा और किन्होंने दी है? कपिल 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 भगवान ने अपनी माता को सांख्य योग की शिक्षा दी है। सांख्य योग का मतलब यह है कि भौतिक चीजें क्या है और भगवान कौन है, हम कौन है, मतलब इसका अलग अलग। सांख्य ने संख्या, संख्या यानी हम उसका वर्णन करके अलग अलग तरह के डिवीजन करके हम जानते हैं कि ये भौतिक शरीर जो बना हुआ है ये पंच तत्वों से बना है, पंच तत्वों के अलावा इसके अलावा मतलब इनके ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंसेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, पांच तरह के दूसरे मतलब ज्ञान योग के लिए, ज्ञान लेने के लिए कुछ अंश हैं। इस तरह से उन्होंने ये भौतिक चीज़ों का विश्लेषण किया, पर इसके परे आत्मा है और इससे परे परमात्मा है या भगवान है। तो इन सब का जहाँ संख्या पूर्व अलग अलग डिवीजन की कौन क्या है, अपने वास्तविक स्थिति में उसे रखना और हम किस लिए बने, हम कौन हैं, कि भौतिक सूक्ष्म या भौतिक जो सूक्ष्म हो या ये पूरा भौतिक जिसे हम देख सकते हैं, मतलब स्थूल, हम स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, वास्तव में आत्मा है, भगवान के अंश हैं। भगवान ने हम सबको बनाया है ताकि हम अपने आनंद के लिए और आनंदो माया भयासात, भगवान आनंदमय हैं, भगवान एक से कई हो गए, उन्होंने वो मतलब भगवान इतने बड़े हैं मतलब इतने कि वो कई तरह से खेलना चाहते हैं। भगवान भगवान कई कई जीवों को उन्होंने बनाया अपने आनंद के लिए, कई ब्रह्मांडों की रचना की भगवान ने, अपने अपने धाम की रचना की, अपने धाम में वो कई रूपों में आते हैं आनंद लेने के लिए, मतलब वही कृष्ण ही कई अनंत अनंत रूपों में आकर के अपने आनंद को बढ़ाते हैं। तो भगवान का यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? यहाँ इस धरा धाम पर आए या मत्स्य अवतार के रूप में आए, क्यों भगवान आए? हाँ, वेदों का उद्धार ये एक्सटर्नल चीजें हैं, पर वास्तव में भगवान अपने खेलने के लिए आते हैं, अपना आनंद लेने। समुद्र में उन्हें विचरण करने की प्रलय के काल में उन्हें इच्छा होती है। चलो ये वेदों का उद्धार ठीक है, आप कहेंगे कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, तो वो साधुओं का उद्धार के लिए और दुष्टों का उद्धार के लिए आए, पर ये भगवान अपने अलग अलग, चलो वो भी आपका कहना ठीक है, पर वास्तव में भगवान जब भी आते हैं, जैसे कृष्ण के रूप में आए तो वो कोई इनको शिशुपाल या कंस वगैरह के को मारने के लिए ही नहीं आए, वो वास्तव में अपने भक्तों के साथ में अपनी लीलाएं करने के लिए आए, ताकि हम उनका गुणानुवाद कर सकें, अपने ही आनंद की वृद्धि के लिए आए, अपने भक्तों के साथ करने के लिए। इसी तरह से यहाँ ये भी मत्स्यावतार जो है, तो वो उन्हें मछली के रूप में भगवान किसी रूप में आए, वो भगवान आए, ऐसा नहीं कि मछली के रूप में या सूकर रूप में क्यों आए, उनकी वो स्वतंत्र हैं, किस रूप में कब आए, पर वो अपने आनंद के लिए आते हैं। मतलब भगवान का मुख्य प्रयोजन अपना आनंद है, और अपने आनंद के साथ साथ अपनी लीलाएं बना जाते हैं, मतलब अपने कार्यक्रम ऐसे कर जाते हैं कि उन्हें हम गा गा करके संसार से तर सकते हैं, उन्हीं को याद कर करके हम संसार से तर सकते हैं। तो थोड़ा अब ये जैसे कि एक चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, मैं उसे पढ़ूंगा। एई कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय, एक कृष्ण नाम सब पापों का विनाश कर डालता है। नव विधा पूर्ण भक्ति पूर्ण नाम है तह, और जो नौ विधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, तो नौ तरह की जो भक्ति जो दी हुई है, ये किन्होंने बोला है ये श्लोक? ये श्लोक किन्होंने बोला? हाँ, प्रहलाद महाराज ने। किसको सुनाया था? हाँ, अपने पिताजी को सुनाया था। ये जब दूसरी बार अपने पिताजी से मिले थे तो उनकी गोद में बैठ करके आपने क्या सीखा, तो उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि मैंने ये सीखा है इसको, क्योंकि ये किन से सीखे थे? वो नारद मुनि से, जब अपने माता के पेट में थे, नारद मुनि से उन्होंने ये नवविधा भक्ति के बारे में सुना था, यही उन्होंने बताया कि यही मैंने सीखा है, क्योंकि षंड और अमर्क से वो कुछ सीखते नहीं थे, सीखने के लिए नहीं जाते थे, उनकी कोई भी विद्या उन पर लागू नहीं हुई, वो सांसारिक विद्या थी, और वो उन्हें तो दिव्य ज्ञान प्राप्त था, उन्होंने नारद मुनि से सुना था। तो इसमें दिया हुआ है कि नौ विधा भक्ति पूर्ण नाम है तह, नाम से पूरी नौ विधा भक्ति, मतलब नाम ही लेने से नौ ही जो है अलग अलग तरह की जो भक्ति के जो अंग हैं वो पूर्ण हो जाते हैं जस्ट भगवान के नाम लेने से। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करें, इसमें दीक्षा और पुरश्चर्या, पुरश्चर्या क्या होती है? पुरश्चर्या किसे कहेंगे? जो रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो करना होता है वो, उसकी इसमें कोई उसकी विधि की अपेक्षा, ये विधि है ये निषेध है। तो रूल्स और रेगुलेशन, रूल यानी विधि और रेगुलेशन यानी निषेध। जो रेगुलेशन यानी ये ऐसे नहीं करना, जैसे कि हम जो चार बतलाते हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, तो ये क्या है? निषेध है, इनको पालन इन्हें नहीं करना चाहिए। और रूल क्या है? भगवान के नामों का स्मरण, 16 माला कम से कम करना, ये रूल हैं। तो इसमें ये दिया है कि ये विधि और जो विधि निषेध, इसकी अपेक्षा नहीं है। जिह्वा स्पर्श आचंडाल सबारे उद्धार, भगवान के नाम का स्मरण जिह्वा से स्पर्श होता ही चंडाल का भी उद्धार हो जाता है। मतलब चंडाल जो मीट ईटर है या जो कुत्ते का भी मांस खाता है, वो भी उसका भी उद्धार हो जाता है। अनुसंग फले करे संसार रस है, और इसका अनुसंग करने से, इसका पालन करने से, मतलब भगवान नाम लेने से, ये जो हमारा संसार जो सागर है, संसार किसे कहते हैं? आप संसार किसे कहेंगे? बार बार अलग 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 योनियों में, 84 लाख योनियों में भ्रमण, जो चक्र की तरह, लात चक्र की तरह, चक्र किसे कहते हैं आप? जिस चालू किया जहां से वहीं वापस आ जाए घूम घाम करके, उसे चक्र कहा जाता है। तो संसार में हम घूम घर करके मनुष्य योनि, फिर कई तरह की इतर योनि, इस मनुष्य जीवन में हम अरबों जीवनों को अपना तैयार कर लेते हैं आगे की, मतलब इस तरह से बीज हम बोते हैं कि कई जीवन में भटकने के बाद में, पर भगवान की कृपा से फिर हमें मनुष्य जीवन मिलता है। और इस तरह से कई बार मनुष्य जीवन मिला, कई बार 84 लाख योनि में भटकते हुए फिर मनुष्य योनि मिला, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भगवान के धाम में जाया जा सकता है, इस चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। मतलब ये संसार चक्र में जो हम भटक रहे हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें वास्तव में भगवान के शरणापन्न होना पड़ेगा। हमें जो शिक्षाएं दी गई हैं श्रीमद् भागवत और भगवद गीता के माध्यम से या चैतन्य चरितामृत के माध्यम से, उसका पालन करके हम इसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसमें दिया है कि संसार से छुटकारा जो है, ये भगवान नाम का अनुसंग करने से संसार का क्षय हो जाता है, संसार खत्म हो जाता है, संसार चक्र में हमें रहना नहीं पड़ता। चित्त आकर्षिया कराए कृष्ण प्रमोदय, और भगवान के नाम में चित्त को आकर्षित करके कृष्ण का प्रेम हमें प्राप्त हो सकता है। एक कृष्ण नाम से सारे पापों का क्षय होता है, नाम से ही नवविधा भक्ति पूर्ण होती है। नाम दीक्षा पुरुषचर्या आदि विधियों की अपेक्षा नहीं रखता, जिह्वा से स्पर्श होते ही चंडाल तक का उद्धार करता है। वह साधक का चित्त बरबस आकर्षित कर कृष्ण प्रेम प्रदान करता है, संसार का क्षय इसका आनुषंगिक फल है। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि ये हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है, इस जीवन में क्या होना चाहिए? संसार से क्षय होना ही हमारा लक्ष्य है या और कुछ है? हाँ, कृष्ण प्रेम। हमारा लक्ष्य भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। सिर्फ ये संसार क्षय होना यानी मोक्ष होना, संसार क्षय का मतलब क्या? संसार में तड़पड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, तो मोक्ष यानी किसी चीज से छुटकारा, किसी बीमारी से भी, उसे भी मेरा इस बीमारी से मोक्ष हो गया यानी छुटकारा मिल गया। तो वास्तविक हमारा लक्ष्य ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष नहीं है, हमारा वास्तविक लक्ष्य कृष्ण प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यही जीव का स्वभाव है। हम कृष्ण के बच्चे हैं, तो बच्चा क्या करेगा? अपने माँ बाप से प्रेम करेगा, माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। तो यही आदान प्रदान, मतलब हम भगवान के धाम में प्रेम करके क्यों जाते हैं? भगवान के धाम में जाने की क्या जरूरत है? यदि आप सुखी हैं तो भगवान के धाम में क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, तो बच्चे की तरह भगवान के साथ खेलना, आनंद मनाना, उनके साथ भोजन करना, उनके साथ बैठना, यही वास्तविक हमारा लक्ष्य है। मतलब भगवान से प्रेम करना। प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि प्रेम कैसे, ये आदान प्रदान से। मतलब भगवान अपने भक्त के लिए तड़पते हैं, भक्त भगवान के लिए तड़पता है, ये एक दूसरे का प्रति आकर्षण है। पर हमें उसके लिए भगवान, मतलब शुद्ध हृदय से भगवान का भक्त बनना होगा। तो अब यहाँ इस चैतन्य चरित्र में दिया हुआ है कि आप यदि जिह्वा से भगवान नाम ही लेंगे तो आपका ये संसार चक्र से छुटकारा हो जाएगा और भगवान का प्रेम भी मिल जाएगा। संसार का जो आनुषंगिक, जो संसार का क्षय यानी बार बार संसार चक्र में आना, इसका तो क्षय हो ही जाएगा, ये आनुषंगिक फल है। वास्तविक क्या है, ये बातें कहाँ हुई थी पहले और चैतन्य चरितामृत में कहाँ इसका वर्णन दिया हुआ है संसार क्षय होने का? जब हरिदास ठाकुर, वो इनके यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार इनके घर में थे और कुछ चर्चा हो रही थी और ये डिस्कशन कर रहे थे, तो हरिदास ठाकुर ने बतलाया कि भगवान नाम का वास्तविक लक्ष्य भगवत प्रेम है, भगवान नाम का मोक्ष नहीं है, संसार क्षय होना नहीं है, संसार क्षय जो है ये आनुषंगिक फल है। तो रामचंद्र पुरी या रामचंद्र खान जो समय था, जो इनके लेखक थे, ये मतलब ये अकाउंटेंट थे गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार के, वो इमीडिएटली कह लगे कि आप क्या बात कर रहे हैं, नाम कितनी महिमा गा रहे हैं, ये आनुषंगिक जो इतना बड़ा जो फल है ये और आनुषंगिक फलों से बतला रहे हैं ये भगवान नाम का। तो वो कहने लगे कि ये सही नहीं है आपका एक्सप्लेनेशन, जीव का लक्ष्य इस संसार से मुक्ति पाना है या जो दुख हो रहा है उससे मुक्ति पाना है संसार में, मतलब मोक्ष पाना है, और ये नाम का कोई आनुषंगिक मात्र फल नहीं है, ये नाम का मेन फल है। तो उन्होंने कहा यदि ये सही नहीं है तो रामचंद्र खान, वो खान यानी कोई मुसलमान नहीं थे, वो ब्राह्मणी थे, तो उनका कहना ये पड़ा कि यदि ये बात तुम्हारी यदि गलत निकली तो मैं तुम्हारी नाक काट डालूंगा। और तो हरिदास ठाकुर तो कुछ नहीं बोले, भगवान नाम लेते रहे, चले गए। पर नेक्स्ट डे दिन से उन्हें ये रामचंद्र खान को ये लेप्रसी हुई और लेप्रसी में उनकी नाक अपने आप ही गल गई। मतलब ये क्योंकि भक्तों की शिक्षा यदि हम न लेंगे और उनसे हम न सुनेंगे और वास्तविक नाम लेने का पर्पस क्या है यदि हम इसे न देखेंगे, तो हर चीज के पीछे कुछ न कुछ लक्ष्य रहता है, हर चीज करने के पीछे हमें कुछ न कुछ पता होना चाहिए कि उस किस कारण से कर रहे हैं, और उस मेन चीज को हम लें, न कि कई तरह के चीजों को जो उसके वास्तविक लक्ष्य नहीं है। हमारा नाम लेने का मुख्य लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्त होना। तो यहाँ ये बतलाया जा रहा है कि भगवत नाम से ही लेने से हमें हमारा लक्ष्य भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो फिर दीक्षा की पुरुषचर्या की जरूरत क्या है, क्यों दीक्षा लेना, ये मेरा प्रश्न है आपसे, और इसके बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा। और फिर दीक्षा लेना तो किससे दीक्षा लेना, तो ये सही है या नहीं है। ये जो इन्होंने चैतन्य चरितामृत में जो मैंने श्लोक अभी पढ़े कि एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय, नव विधा पूर्ण भक्ति नाम हेते है, दीक्षा पुरुषचर्या विधि अपेक्षा ना करे, जिह्वा स्पर्शे आचंडाल सवारे उद्धारे, जिह्वा के स्पर्श ही आचंडाल से सबका उद्धार हो जाता है। और ये संसार क्षय तो अनुसंगिक फल है, पर भगवान के प्रति प्रेम होकर के चित्त आकर्षिया कराए कृष्ण प्रेमोदय, कृष्ण का प्रेम भी मिल जाता है, जो वास्तव में भक्ति का हमारा जो लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, वो हमें प्राप्त हो सकता है जस्ट नाम लेने से। तो दीक्षा की आवश्यकता क्या है, आप कोई कुछ इसमें प्रकाश डालना चाहें या किसी को कुछ, जब कृष्ण नाम की इतनी शक्ति बिना दीक्षा के कृष्ण प्रेम तक प्रदान कर सकता है, तो कृष्ण नामात्मक मंत्र को जो नम शब्द से जो आता है ओम या हरे कृष्णा महामंत्र, वही ले लें फिर, और हमें दीक्षा कौन गुरु अच्छा है, उनकी उनकी देखभाल करना कि गुरु सही है या नहीं है, या ऐसा क्यों, मतलब उसमें तो एक समय लगता है। अब गुरु मान लो बाद में गिर गया या अपने जगह से चलायमान हो गया, या गुरु खुद का ही उद्धार नहीं कर सकता था, हमारा उद्धार कैसे करेगा, तो ये तो कई समस्याएं आती है ना, कोई गलत जगह पड़ जाने से तो आपका नुकसान ही होगा। गुरु की शरण ग्रहण करना हमेशा जरूरी है, पर यहां तो ये बतला रहे हैं चैतन्य चरितामृत की जरूरी नहीं है। गुरु की शरण से क्या प्राप्त होने वाला है, भगवत प्रेम के लिए हम गुरु लेते हैं, पर यहाँ बतला रहे हैं कि गुरु पर क्या है। ये आपका कहना सही है कि गुरु होना, जैसे कि मान लो अब इसमें कुछ उदाहरण दिया हुआ है कि नाम जो मंत्र में इतनी शक्ति जरूर है, तो दीक्षा की आवश्यकता इससे क्या दीक्षा की अनावश्यकता सिद्ध नहीं होती, क्या वो आवश्यक नहीं है। तो महाप्रभु और अन्य गौड़ीय आचार्यों ने नाम और नामात्मक मंत्रों की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार किया कि नाम में इतनी शक्ति है, चैतन्य महाप्रभु ने भी और सभी वैष्णवों ने। जीव गोस्वामी ने मंत्र देव प्रकाशिका तंत्र और गोपाल मंत्र बिना दीक्षा आदि की अपेक्षा रखते हुए सभी वर्णों और आश्रमों के स्त्री पुरुषों को अभीष्ट फल प्रदान करता है, ये बतलाया है। पर तो भी इसमें दिया हुआ है और जीव गोस्वामी और इन्होंने कि क्यों, जैसे कि हम जो हैं हम माया मायांध जीव के लिए मंत्र परम शक्ति संपन्न होते ही वैसे ही है जैसे अंधे के लिए सूर्य। अंधा यदि कोई व्यक्ति, हम अंधे हैं, ओम अज्ञान थे मेरा अंधश्य, अज्ञान से जो हमारी आंखें ढकी हुई हैं और हम अंधे हैं, तो अब अंधे को शुरू से रास्ता दिखाएगा कौन, मतलब कि ये शास्त्र है ये नाम है। तो नाम की महत्ता या नाम शुद्ध नाम देना, ये गुरु की कृपा से ही हमें शुद्ध नाम प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जो गुरु शुद्ध नाम लेकर के हमें देता हो सो मायांध जीव के लिए मंत्र परम शक्ति संपन्न होते भी वैसा है जैसे अंधे के लिए सूर्य। अब यदि सूर्य है भी और यदि हम अंधे हैं तो हम सूर्य को जान नहीं सकते कि क्या है। सूर्य हमें चीज़ों का बतलाता है कि ये बुक है, ये टेबल है, मतलब हमें ज्ञान देता है चीज़ों वस्तुओं के बारे में। उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश के द्वारा माध्यम से हम चीज़ों के वास्तविक वास्तविक चीज़ों को हम जान सकते हैं। तो वास्तविक तक हम जान ही सकेंगे कि ये नाम का इतना महत्व है और क्यों है, इसलिए तो गुरु होना जरूरी है। जैसे दूसरा इन्होंने यहाँ उदाहरण भी दिया है कि हमारा जो मन है, जो देहात्म बुद्धि वाले हैं, देह में ही हम इसे देह को ही सब कुछ मानते हैं, देह और उससे संबंधित मतलब देह को ही हम आत्मा मानते हैं, अपने पुत्र पत्नी भृत्य देवता अतिथि। और तो ये यदि हमारी देहात्म बुद्धि है तो इस पर हम यदि नाम लेंगे भी कि तो इस पर असर नहीं पड़ेगा नाम का। आप कहेंगे कि नाम का असर क्यों नहीं पड़ेगा? अग्नि के संपर्क में जो भी वस्तु आती है उस पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता, पर एस्बेस्टास आप लगा करके अग्नि में कूदेंगे भी तो आप पूरी तरह से जलेंगे नहीं। मतलब एक ऐसा कवच आप धारण कर लें कि आग में, जैसे कि किसको ऐसा वरदान प्राप्त था कि आग में न जलने का? होलिका को ऐसा वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। पर क्या हुआ? पर ये भक्त के लिए नहीं कि किसी को भी जला सकता हो, वो भक्त भगवान के द्वारा प्रोटेक्टेड है, प्रहलाद महाराज भगवान के द्वारा प्रोटेक्टेड, तो वो खुद कवच पहने हुए भी मंत्र का कवच है, जो भी उसके पास में शक्ति थी वो खुद जल गई और प्रहलाद महाराज को जला नहीं, और प्रहलाद महाराज बालों बाल बच गए, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह से हम यदि मान लो एसबीएस ये कवर मतलब अपने सांसारिक विषय वासना का या जो आत्मा को यदि हम सब कुछ ये आत्मा है ना, स्वयं को ही आत्मा मान लें, या हम ये सांसारिक जो चीज़ें हैं उसी को यदि मानते हों, तो इस तरह से व्यक्ति उस अग्नि के द्वारा या भगवान नाम के द्वारा उसका उस पर प्रभाव नहीं होगा। जैसे कि अग्नि का प्रभाव जो मंत्र से अपना सुरक्षा किया हुआ हो, एस्बेस्टास का कवरिंग पहना हुआ हो, उस पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता, इसी तरह से हम पर भी जो इस देहात्म बुद्धि वाले हैं वो नाम में भले कितनी भी शक्ति हो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और शुद्ध नाम हम नहीं ले सकेंगे। मतलब आप अभी भी कई देशों में जाइए भगवान का नाम ले ही नहीं सकते, मतलब उनके मन से निकलेगा ही नहीं, मतलब उनमें कुछ ना कुछ पवित्रता या इन चीज़ों से। इसीलिए हम जो निषेध जो है कि हम धीरे धीरे इन संसारिक विषय वासना से छूट करके शुद्ध भगवान का नाम ले सकें तभी उसका फल प्राप्त होगा, और शुद्ध नाम लेने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु में इस तरह से शक्ति होती है। वो भगवान के में मतलब गुरु शिष्य में शक्ति का संचार करता है, उसे मंत्र जप और अर्चना आदि विधि में सामर्थ्य देता है, और ऋषि मुनियों ने इस अर्चन मार्ग को स्वीकार किया है, विधि विधान की स्थापना की है, इसलिए हमें उनका पालन करना चाहिए। और ये ब्रह्म यामल में शास्त्र विधि का उल्लेख छोड़ करके मतलब ये हम ऐसे यदि करेंगे तो शास्त्र में ये दिया हुआ है, चैतन्य महाप्रभु ने भी गुरु लिया और कृष्ण भगवान भी आते हैं उन्होंने भी गुरु लिया, तो ये चैतन्य चरितामृत में जो नाम की महिमा को दिखाने के लिए ये श्लोक लिखा गया है। नाम की महिमा इतनी है यदि कोई शुद्ध रूप से ले सकता हो तो उसे दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। पर अधिकतर हम सब जो बद्ध जीव हैं, जीव एक तो बद्ध जीव और दूसरा कौन सा होता है? हाँ, मुक्त जीव। तो मुक्त जीव कौन है? हाँ, जो मुक्त जीव जो संसार के मतलब इन चीज़ों से सांसारिक विषय वासना का जिस पर असर नहीं है वो मुक्त है। मुक्त जीव यहाँ भी रहते हैं, भगवत धाम में भी रहते हैं, पर जो भगवान के जो परिकर हैं वो मुक्त जीव हैं या और कुछ हैं? भगवान के जैसे माता पिता हैं, सखा हैं, गोपियाँ हैं, भगवान की इतनी पटरानियाँ हैं, वे कौन हैं? हाँ, भगवान के पार्षद हैं। वो जीव कोटि के आते ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वो मुक्त जीव है, वो जीव है ही नहीं, वो भगवान ही एक्सपांड होकर के इन रूपों में आते हैं, मतलब वो स्वांश तत्व हैं या भगवान की स्वरूप शक्ति के अंश हैं, भगवान की का जो स्वरूप है उसी के अंश रूप में ये जितने भी हैं, नंद महाराज, यशोदा, आप देवकी या वसुदेव या उनके इतने परिकर, इतनी 16108 रानियाँ जितनी हैं, वो कोई भी हमारे जैसे जीव तत्व नहीं है, वो भगवान के डायरेक्ट एक्सपांशन या भगवान, तो भगवान हम भी तो भगवान के एक्सपांशन हैं, पर हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, भगवान के डायरेक्ट अंश नहीं हैं, वो भगवान के स्वरूप शक्ति के अंश हैं, या हम भगवान की कोई एनर्जी, जैसे कि भगवान की कितनी एनर्जियां हैं, मतलब कई एनर्जियां हैं, पराशर शक्ति विदैव शूयते, पर तीन जो एनर्जी जो उनकी हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और मार्जिनल, ये तीन, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो हम तटस्था शक्ति के अंश हैं, हम जीव, इसीलिए हमें जीव तत्व जो कहीं भी दोनों तरफ जा सके। कुछ लोगों ने चुना भगवान की ओर जाने के लिए तो वो पूर्ण मुक्त जीव हुए जो भगवान की सेवा में गए। कुछ लोगों ने चुना है कि हम इस संसार के देखें, संसार जैसे चकाचौंध के लिए मैंने उदाहरण दिया था कि एक मछली अपने जलाशय को छोड़ करके जाती है रेत की चकाचौंध देख करके। रेत ऐसा स्वर्ण जैसा चमकता है, दीप्यमान होता है सूर्य की रोशनी से, तो यदि वो जाएगी तो वो मरेगी, उसमें फंस जाएगी। इसी तरह से हम भी संसार से आकर्षित होकर के, भौतिक जगत से आकर्षित होकर के जा रहे हैं और इस संसार में तड़प तड़प करके, मतलब उसे यही नहीं कि, पर उसे आप कौन ले जा सकता है, मछली तो बेहोश हो गई, उसे उस जलाशय की ओर कौन ले जा सकता है, मरी नहीं है। तो कोई सज्जन गुरु यदि उसे उठा करके जलाशय में वास्तविक में फेंके कि जाओ, तो हमारा उद्धार हो सकता है। तो ऐसे हमें गुरु एक कर्णधार जैसा, जैसे हमारे पास मान लो अच्छी सुदृढ़ नौका भी हो और हमें नौका को समुद्र में फेंक दिया जाए, तो हम क्या समुद्र से पार हो सकते हैं? समुद्र में सुदृढ़ नौका आई और सुदृढ़ नौका को आप चलो आप पार हो जाओ समुद्र को, हम पार कर सकते हैं क्या समुद्र को? हम पार नहीं हो समुद्र में। एक छोटी नौका क्या, अभी अभी आपने सुना ही होगा कि इटली के जो एक जो नौका निकली, बड़ी जहाज नौका क्या, पूरा जहाज भी निकला और जो कैप्टन था, जो कर्णधार जो था, उसने उसे ठीक से, मतलब उसने चट्टानों से उसे टकरा दिया, उसने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है शराब पिए हो या और भी कुछ हो। तो 4,500 लोग उसमें बैठे हुए थे, अभी भी की बात है, 3-1 सप्ताह का, आपने पेपरों में पढ़ा भी होगा। तो कर्णधार यदि ठीक नहीं है तो इसलिए गुरु जो होता है, तो छोटी नौका तो क्या, बड़ी बड़ी जो जहाज भी, जैसे पहले कौन सा जहाज जो डूब गया था, हाँ टाइटैनिक, तो उसी तरह से ये भी, इसी का भी वैसा ही हाल हुआ। तो कोई जहाज भी नहीं बचा सकता तो छोटी नौका की तो बात दूर रही। मतलब छोटी नौका हमें मिल भी जाए, बड़ी सुदृढ़ भी हो, तो भी यदि जब तक सही कैप्टन ना हो, हम इस सागर से पार नहीं हो सकते। तो वो कैप्टन जो है वही गुरु है जो हमें सही मार्ग प्रदर्शन करके, देख करके, हमें सही दिशा में बता करके हमें संसार सागर से पार करा सकता है। इसलिए गुरु का होना जरूरी है। पर वो गुरु मतलब ऐसा हो जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका हो, जो संसार में बंधन में नहीं हो, मतलब संसार की जो विषय वासना में फंसा हुआ नहीं हो। मतलब एक ड्राउनिंग मैन कैनॉट सेव अनदर ड्राउनिंग पर्सन, जो डूब रहा हो वो किसी दूसरे डूबते हो को नहीं बचा सकता, उसे स्वयं को वास्तव में वो उभरा हुआ, मतलब संसार सागर में निर्लिप्त जो ना हो, संसार में जो फंसा हुआ ना हो, निर्लिप्त होना जरूरी है, मतलब जो उसमें फंसा हुआ नहीं हो वही हमें संसार से बचा सकता है। और ऐसे गुरु में जो संसार से परे हो, आचार्यवान पुरुषो वेदो, जो आचार्य है, जो वेदों को जो अच्छी तरह से तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत, तो जो अपने जानने के लिए ऐसे गुरु की खोज में हमें करना चाहिए कि गुरु में फिर वैसे ही भक्ति होना चाहिए। यश देवे पराभक्ति, यथा देवे तथा गुरु, तस्यते ही कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। मतलब क्या है कि जैसे हम भगवान में जैसे हमारी श्रद्धा है, वैसे गुरु में भी श्रद्धा होना चाहिए। पर गुरु अपने आप को भगवान नहीं मान सकता, और गुरु आपको आप यदि उस वर्ष की मुझे तुलसी के मेरे चरणों में चढ़ाइए, मेरी वैसे ही पूजा कीजिए, भगवान की पूजा करने की जरूरी नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, शास्त्र में भी कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, सब कुछ गुरु ही सब कुछ है। पर यदि ये गुरु अपने आप को ऐसा समझता हो तो वो वास्तव में गुरु नहीं है, वो कौन है? गौरु। गौरु और गुरु में अंतर क्या है? गौरु यानी गाय, यानी गाय जैसा, कि गाय को हम क्यों उदाहरण दे रहे हैं? गाय तो बड़ी देवताओं की, 33 करोड़ देवता उसमें आश्रय लेते हैं, तो गाय को उदाहरण क्यों दिया जाता है? गौरु यानी गाय का ही मतलब है, तो गाय को क्यों बतलाया गया? गाय में क्या खराबी है ऐसे कि उसे गुरु को गाय बना दिया तो अच्छी बात है, 33 करोड़ देवता उसमें आश्रय लेते हैं, तो ऐसा क्यों कहा गया? फिर शास्त्र में और भी जगह कहा है, ये ना यशात्म बुद्धे कुण पितृ धातु के सएव गोखर, तो उसमें भी है ना, उसमें अब आखिरी की लाइन क्या है? सएव गोखर, तो गाय का उदाहरण क्यों दिया है? हाँ, गाय नहीं जानती, इसलिए गुरु को गाय, मतलब वो गाय नहीं होना, नहीं, पर कुछ और भी कारण है। तो उसमें क्या, गाय में क्या खराबी है? गाय का उदाहरण, सूअर कुत्ते का उदाहरण क्यों नहीं दिया? खर तो गधे का तो दिया है, पर यहां तो गाय, क्योंकि गाय बछड़े के मरने के बाद भी उसे चाटा करती है, वो समझती है कि यही मेरा बच्चा है, ये जीवित है, वो समझती नहीं है कि बछड़ा मर चुका है, मतलब उसमें अज्ञानता है। जो मर गया उसी से लिपायमान होना, उसी को सब कुछ अपना समझना, ये कहाँ तक सही है? मतलब अज्ञान वश संसार को ही सब कुछ समझते हैं कि संसार में मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा घर, मेरा इंश्योरेंस, सब कुछ यही मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरह से गाय में ये विवेक नहीं रहता, जबरदस्ती गाय को दूर करना पड़ता है। इसी तरह से हम भी संसार को ही सब कुछ समझ रहे हैं, इसीलिए वो गाय का उदाहरण दिया गया है। मतलब गाय में ये क्षमता नहीं है कि ये बच्चा मरा हुआ है, ये बच्चा जिंदा है और इससे मुझे दूर होना है, इसलिए गाय को धन दिया जाता है। तो दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभ तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणाम बिना। अब ये बतलाइए कि यदि मान लो आपको सदगुरु न मिले तो क्या करना चाहिए? आपने ढूंढा खोजा और आप में कुछ न कुछ, मतलब कम से कम आप जैसे डायमंड खरीदने जाते हैं, सोना खरीदने जाते हैं, आपको थोड़ा तो पता होना चाहिए कि ये डायमंड है या कांच के कोरे टुकड़े हैं। इसी तरह से गुरु भी आपको चाहिए और आपको मान लो सही मिला ही नहीं, जहाँ गए वहाँ आपको धोखा ही हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? और गुरु को त्याग कब करना चाहिए, इस बारे में बतलाऊंगा। तो ऐसी अवस्था में मतलब क्या करेंगे, मतलब आप शास्त्रों में हर तरह की बातों का वर्णन है। तो यदि गुरु आपको न मिला तो बैठे रहना, किसी को भी गुरु बना लेना जो वास्तव में मंत्र तंत्र में विशारद न हो और भगवान के समीप न हो, या जो आपको उद्धार आपका न कर सकता हो, तो किसी को भी गुरु बना लो या आप बैठेंगे। हाँ, भगवान की कृपा का इंतजार करना चाहिए, जब भगवान ऐसा आएगा। पर ऐसा नहीं कि जानबूझ करके आप धोखा न खाइए, आप पूरा उसमें, ये सही बात है आपके, भगवान की कृपा से याचना चाहिए। क्या उसमें 2:11 श्लोक भगवद गीता में दिया हुआ है, क्या है वो? नो, वो नहीं। हाँ, भगवद गीता 2:11, हाँ दूसरे नहीं, ये नहीं, ये भगवद गीता के दूसरे में है। अच्छा, पर उसमें है कि आप यदि ये श्लोक पढ़ते रहें तो भगवान आपको खुद ही कि भाई मैं इस संसार में डूब रहा हूँ, मैं अज्ञान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, पर क्या मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। यदि आप ये भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपको सही मार्ग प्रदर्शन करेंगे। हाँ भाई, ना वो तो ददामी बुद्धि युगंतम, वो भी ठीक है, वो श्लोक मैं ऐसे एकदम अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ सुन सर, नानु सोचंती पंडित है, नहीं वो श्लोक, वो श्लोक का मैं नहीं, हाँ भगवद गीता है यहाँ कहीं, कार्पण्य दोष हो वही वही, हाँ कार्पण्य दोष पहत स्वभाव प्रच्यामित्वाम धर्म समूढ़ चेता यश्रेय निश्चितम बुद्ध सिद्धे शिष्यस्ते साधि मामतम प्रपन्नम। तो मतलब ये कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, मुझे क्या करना, कार्पण्य यानी कि मेरी बुद्धि विचलित हो रही है, उसमें कृपणता है, मतलब मैं कृपणता या कार्पण्य ने कृपणता या कंजूसी की मेरी बुद्धि ऐसे विकसित नहीं है, तब मुझे तार इस तरह से कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रच्छामि धर, तो मेरा आप धर्म क्या है इस जगह, धर्म समूढ़ चेता यश श्रेय निश्चितम बुद्ध श्रेय निश्चितम बुद्धि शिष्यस्ते साधे मानतम प्रपन्नम। तो मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपका शरणागत होता हूँ, प्रपन्न है ना शरणागत होना, शिष्यस्ते ये, तो मैं आपको प्रपन्न हूँ, कृपया मुझे उचित मार्ग प्रदर्शन कीजिए। तो फिर भगवान, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था प्रभुपाद की, मतलब मैं ये 72 से मैंने थोड़ा इस्कान ज्वाइन किया, उनकी पुस्तकें पढ़ना ये पढ़ना, पर प्रभुपाद की इतनी जो भगवान जैसे ही जो आरती होती है, क्योंकि हमने इंडिया में देखा नहीं था, मैं उस समय विदेश में था और इतना कभी देखा नहीं था कि प्रभु कि गुरु की भी आरती एक भगवान की जैसे करना, पुष्पा इतने मालाएं, पुष्पांजलि इतने धूमधाम से, उनका जो उनका बर्थडे मनाना, तिरोभाव मनाना, इतना हमने देखा नहीं था, इतना बर्थडे मना करना। तो मैंने सोचा कि अपने लिए ज़्यादा ऐसा ले रहे हैं, ये शास्त्र से अनुमोदित नहीं है। तो फिर मैंने इंडिया में, मतलब मुझे कई वर्ष खोज में लग गए कि ये सही है या नहीं है। फिर मैं इंडिया में आया तो एक ने मुझे बतलाया, एक जो मेरे शिक्षा गुरु थे या बचपन से जो मेरे गुरु थे, उन्होंने बतलाया कि आप ये श्लोक को पढ़ते रहिए और आपको भगवान बुद्धि देगा। और ये शास्त्र अनुमोदित है कि गुरु की इस तरह से पूजा करना चाहिए, भगवान के जैसे मानना चाहिए। वो अपने आप को नहीं मानते पर उन करना ये सही है, ये सही तरीका है। फिर मैंने प्रभुपाद जी से दीक्षा ली, मतलब 72 में मैं इस खान में से मैं जुड़ा, पुस्तकें पढ़ने लगा, माला जपने लगा। पर बाद में 77 में मैं आकर के दीक्षा ले पाया। ये मात्र ये श्लोक को याद करके या इसी कन्फ्यूजन से कि गुरु की ऐसी पर ये सेवा जरूरी है, जैसे यहाँ दिया भी मैंने श्लोक पढ़ा भी था, यश देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। पर हमें गलत गुरु को यदि गुरु न भी मिलता हो तो आप गलत गुरु न ले, भगवान के आश्रित हों और धीरे से आपको भगवान का मतलब ये जरूरी है कि आप यस गुरु होना चाहिए। नरदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, कि ये नर जो मनुष्य शरीर है ये क्या है, एक तरह की सुदृढ़ नौका है और ये पाना बहुत मुश्किल है। ये इस तरह का शरीर मनुष्य जीवन मिलना बहुत मुश्किल है, पर गुरु जो है वो कर्णधार जैसा मतलब कैप्टन है ऑफ द शिप है। मायानुकूलेन न भस्वरेति, और भगवान की कृपा से मायानुकूलेन मतलब मेरी कृपा से अच्छी हवा आ रही जो कि नौका को धका रही अपने आप, पर सही जगह किस दिशा में तो कहीं भी धकाएगी। मतलब भगवान की कृपा है तो भी भगवान की कृपा से भी हमें गुरु की कृपा भी चाहिए, गुरु भी होना कि वो हमें वास्तविक जगह के डायरेक्ट करके ले जाए। तो भगवान पुवाब्धिम पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्महा, तो यदि ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से गुरु की सहायता उपलब्ध है और गुरु को कर्णधार न बनाता हो, वो अपने आत्मा का हनन कर रहा है। ये जो है न तरेत सा आत्मा, जो अभी संसार सार को पार नहीं करना, क्योंकि मनुष्य जीवन अब कब मिलेगा, 84 लाख योनियां और तब भी हमें ऐसा मौका मिलेगा या नहीं। ऐसा भी देखिए, ये चैतन्य महाप्रभु अभी मात्र 500 वर्ष पहले आए, उन्होंने ही कृष्ण प्रेम को आसान बांटा और उन्होंने क्या कीमत मांगा उसके लिए, जो उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया और सब तो सबको मिला क्या, कृष्ण प्रेम सबको नहीं मिल पाया। किन लोगों को मिला, उनमें क्या मतलब क्वालिफिकेशन था जिन्हें मिला, नहीं 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 थोड़ा उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं, सबको खुले हस्त मुक्त हस्त से वितरण किया। पर किन लोगों ने उसे, किन लोगों को मिला वो, हाँ जिन्होंने अपनाया या जिन्होंने इतनी लोलुपता या लालचपना था, जिन्होंने लेने की मतलब लौल्यम अपि मूल्यम च, इसका मूल्य क्या है कृष्ण प्रेम लेने का, इतनी लोलुपता होना, जैसे कामुक व्यक्ति के लिए लोलुपता रहती है ऐसे ही लोलुपता भगवान को प्राप्त करने की होना। तो आपको लोलुपता लौल्यम उसका कीमत है, क्या आप किस चीज खरीदने में कीमत चाहिए ना, भगवान ने फ्रीली बांटा पर कीमत जो है वो लोलुपता होना चाहिए। जैसे हमें संसार विषय वासना में लोलुपता है, धन कमाने में धन बढ़ाने में सब कुछ की लोलुपता है, अच्छा पुत्र हो जाए उसे जाप मिल जाए विदेश चला जाए अच्छी शादी हो जाए, ये सब कुछ का लालच है। पर हमें उतनी भी लालचता ना होगी, उससे कम भी होगी तो भी भगवान स्वीकार करेंगे। मतलब हमें जितना संसार में मोह है उतना यदि हम उससे थोड़ा भी परसेंटेज भगवान के उपयोग करेंगे तो हम तर सकते हैं। यही कि हमें डाइवर्ट करना है, जो अभी हमारा ध्यान या मन जो संसार में है उसे थोड़ा भी डाइवर्ट करके भगवान की ओर ले जाएंगे तो हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। क्योंकि भगवान, हम एक कदम लेते हैं भगवान कई कदम लेते हैं, मतलब हम एक लेंगे भगवान 10 लेंगे। तो अब जब भगवान ही ने हमें बचाने का ठेका ले लिया है तो हम क्यों ना बच पाएंगे। हमें चाहिए कि हम भगवान की ओर उन्मुख हों, भगवान की ओर उन्मुख होंगे तो हम अवश्य संसार से पार पा सकेंगे। तो प्रभुपाद जी ने जो मेन जो चीज़ें हैं, मतलब उन्होंने जैसे कि आप लोग सवेरे आ रहे हैं तो मेन मेन चीज़ें सभी इसमें भगवान की भक्ति के आ जाते हैं। गुरु की पूजा है, शास्त्रों का अध्ययन है, भगवान का नाम स्मरण है, तुलसी की सेवा है, भगवान को ऑफर करके प्रसाद खाना, तो ये सभी चीज़ें आसानी से बड़ी हो जाती है। मतलब बड़े ही साइंटिफिक विधि से ये प्रभुपाद ने इन चीज़ों का निचोड़ करके हमें दिया कि इसे लेकर के हम संसार सागर से पार हो जाएं। तो ऐसे गुरु को, प्रभुपाद जैसे गुरु को हमें स्वीकार करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को लेना चाहिए, उसे पढ़ करके, मनन करके, स्टडी करके, अब ला करके हम संसार से पार हो सकते हैं। अब कैसे गुरु का त्याग करना चाहिए ये मैं थोड़ा बतलाऊंगा। और तो गुरु के बारे में तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा कि अब गुरु त्याग, तो गुरु का कभी त्याग करना, गुरु किसे कहते हैं? गुरु एक है या अनेक है? एक है, गुरु तत्व एक है। ऐसे गुरु तो तत्व एक है, गुरु तत्व है ना, ओरिजिनल गुरु तो कृष्ण ही है या बलराम जी हैं। श्रीमती राधा रानी भी गुरु है? श्रीमती राधा रानी गुरु है या कृष्ण या बलराम जी गुरु हैं? वैसे राधा रानी भी गुरु जी हैं, ऐसा नहीं, बलराम जी नहीं, राधा रानी वो जिस रूप में चैतन्य महाप्रभु क्या कह गए, आराध्यो भगवान व्रजशतनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना वरवधु वर्गे न वा कल्पिता। जिस पाथ पर ये गोपियां जिस गई हैं उस पाथ पर चलना, तो वो तो गुरु तो चैतन्य महाप्रभु खुद ही राधा रानी को गुरु मान रहे हैं, तो हम कहेंगे बलराम जी गुरु हैं। वो गुरुओं के वो हैं, वो ठीक है, पर वास्तव में राधा रानी ओरिजिनल गुरु है, उन्हीं के पाथ पर चलना वही वास्तविक है। तो यदि कोई व्यक्ति तुष्ट नहीं है और दूसरा गुरु कर ले, या गुरु तो दीक्षा गुरु क्या एक से अधिक हो सकते? कितने तरह के गुरु होते हैं? दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और एक और गुरु है वर्तमान प्रदर्शक, जिन्होंने हमें मार्ग में उसकी तरफ बढ़ाया आगे, तो वो वर्तमान यानी वर्तमान में हमें प्रदर्शन किया मार्ग का। उन्होंने कोई शिक्षा नहीं दी है, पर कैसे भी अट्रैक्ट करके आपको लाए, या जैसे सबसे पहले किसी ने किताब आपको दी या कोई मंदिर में लेकर के आया, तो वो आपका वर्तमान प्रदर्शक गुरु है। वो भी उसे भी मानना चाहिए कि हमें भगवान की ओर उन्मुख किया, भले उन्होंने हमें न शिक्षा दी है न दीक्षा दी है, तो भी उसे गुरु जैसे ही मानना चाहिए। तो दूसरा है शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक होता है। आप पर वो गुरु को चुन करके लेना कि वो गुरु में सभी लक्षण हैं, क्योंकि ये गुरु तो अब गुरु तो लोग अपने माता पिता इनको भी गुरु मानते हैं, माता पिता जिन्होंने शुरू में शिक्षा दी है या कोई मटेरियल एजुकेशन दे रहा है वो भी एक तरह के गुरु हैं। तो फिर दूसरा गुरु की क्या आवश्यकता पड़ गई, तो उनको क्या बोलते हैं इन चीज़ों को, इन लोगों को व्यवहारिक गुरु, जो व्यवहार में जिन्होंने गुरु का किया है वो व्यवहारिक गुरु हैं। और एक दूसरा वास्तविक दीक्षा गुरु, जो वास्तविक गुरु है जो हमें भगवान से भगवान का प्रेम दिलवाता हो, भगवान की ओर उन्मुख करता हो, भगवान की ओर हमें आकर्षित करता हो और भगवान के इतना बढ़ा करके हमें भगवान के प्रेम के लेवल तक ले जाता हो, संसार सागर से जो छुटकारा दिलाता हो। पर छुटकारा दिलाना ही मात्र कर्तव्य नहीं है, गुरु को भगवत प्रेम दिलवाना यही मेन उद्देश्य है। तो एक तो जो वैष्णव नहीं है, अवैष्णव गुरु है, उसका आप त्याग कर सकते हैं। यदि आपने पहले कभी दीक्षा ली हो, जो वैष्णव मान लो गुरु है ना, उन्होंने कोई देवी को मानने वाला हो, शंकराइट हो या और भी कई तरह के देवताओं को करता और कृष्ण से, तो वो भगवान की ओर कृष्ण की ओर उन्मुख नहीं करता, तो उसका आप त्याग कर सकते हैं। दूसरा गुरु तो एक तो जो अवैष्णव है उसको आप त्याग कर सकते हैं। फिर दूसरा यदि वो अभी ठीक है पर बाद में उस रुख बदल गया हो तो क्या करना चाहिए, मतलब उनको पूरा आदर देना चाहिए पर उसे दूर से उनसे संबंध अपना हम छोड़ सकते हैं। और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको सही गुरु दे, पर दीक्षा फिर से और लेना कोई जरूरी नहीं है। इस कान में भी ऐसा हो चुका है, पर कोई दीक्षा लेना फिर जैसे प्रभुपाद जो अपने संप्रदाय के अपने हैं उन्हीं को गुरु मान लेना, मान लो किसी ने दीक्षा ली और किसी कारणवश या पूर्व संस्कारवश कोई गुरु अपने भक्ति मार्ग से या संसारी या पहले जैसे वैसा न रहा हो, पहले जैसे भगवान में जैसे आकर्षण था न रहा हो, तो आप उन्हें आदर बराबर दीजिए, उन्हें उनका निरादर मत कीजिए, तो फिर प्रभुपाद की शरण, मतलब मैं अपने संप्रदाय की बात कर रहा हूँ कि ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में या इस्कान में जो हम हैं, तो प्रभुपाद को आप गुरु मान करके उनसे उनसे ही, क्योंकि उनके जैसे अंकल रहते हैं या घर में अंकल हैं, आंट हैं, दूसरे उनसे भी आप गुरु, उनको ही गुरु जैसे मान करके उनसे ही शिक्षा लीजिए, पर उनका त्याग से मतलब यही कि उनसे आप उनको सुने मत, ये नहीं कि आपने उनको अलग कर दिया, उनका निरादर करना चालू किया। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि यदि किसी पूर्व संस्कारवश यदि कभी गिर भी गया हो और पर जो पहले वास्तव में शुद्ध गुरु था वो वास्तव में शुद्ध गुरु है और उससे कभी बन जाएगा भले इस जीवन में तो अगले जीवन में, तो इसलिए हमें उसका अनादर नहीं करना चाहिए, उन्हें मान करके आप। और दूसरे तीसरे चौथे तो ऐसे तो कई ऐसे तो ऐसे कितने से आप गुरुओं से लेते रहेंगे, आपने एक को अपने दीक्षा गुरु बनाया है तो वो ठीक है, पर आप बाद में उनसे शिक्षा मत लीजिए या जो कहते हैं यदि किसी कारणवश वो गिर गए हों। तो ये ऐसे शास्त्र, ये शास्त्र का सम्मत बातें हैं। सही से परम बिंदु गुरु परक तो प्रत्येक जन्म नहीं मिलता, कृष्ण ही गुरु से मिलाने वाले रहते हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कर प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये ब्रह्मांड में हम कई समय से जा रहे हैं, पर यदि हमें वास्तविकता यदि है, यदि हम सही माने में कृष्ण की ओर उन्मुख होना चाहते हैं, कृष्ण तो भगवान गुरु कृष्ण की कृपा से गुरु मिलेगा और गुरु कृपा से हम कृष्ण के बारे में ज़्यादा जाएंगे और उनके धाम में जाएंगे। मतलब ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। यदि हम वास्तविक भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, जैसे कि लोग माया को पकड़े रखते हैं और कहते हैं माया ने पकड़ लिया, पकड़ा हमने माया को है, पर हम कहते ये हैं कि माया ने मुझे पकड़ लिया, ये गलत है। जैसे आपने कोई झाड़ को पकड़ लिया हो और कहता है झाड़ मुझे नहीं छोड़ता, तो वास्तव में झाड़ तो छोटा हुआ ही है। तो हम सभी भगवान की ओर जाने के लिए सशक्त हैं, हमें इतनी तीव्र अभिलाषा चाहिए कि हम भगवान से जाएं, तो भगवान की कृपा से हमें सही गुरु मिलेगा। यदि आप चीटर्स एंड बी चीटेड, यदि आप चीटेड होना चाहेंगे तो आपको चीटर मिलेगा, कई मिल जाएंगे। यदि आप सही कीमत न देना चाहते हो, मतलब जो उसके नियम धर्म है जो कुछ करना चाहिए, मतलब संसार का धीरे धीरे संसार से विरक्त होना ही पड़ेगा, हम संसार को भी पकड़े रहेंगे। जैसे नाव, जो नाव एक किनारे पर है, नाव में भी पैर है और एक नाव के अंदर एक किनारे पर भी है, तो आप आगे पार कैसे हो सकते हैं नाव से, मतलब आपको संसार से दूर होना पड़ेगा। पर आप कहें नहीं मैं यहाँ भी चिपटे रहूँ, संसार विषय वासना में भी मैं भोगता रहूँ और भगवान के धाम में चला जाऊँ, ये दोनों संभव नहीं है। तो आपको जो गुरु मिलेगा वो आपको चीटर गुरु मिलेगा, कुछ पैसे आपको लेकर के संसार में बांधे रखेगा। तो आपको चाहिए कि आपकी जिज्ञासा सही हो, आप सही माने में भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे संसार से मेरा उद्धार कीजिए, तो हमें ऐसा गुरु अवश्य मिलेगा। यदि कोई आप, मैं समय से ज़्यादा चला गया हूँ, आपको यदि कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो, मतलब ये श्लोक में तो हमने जो पढ़ा ये जो वो तो आपको पता ही है, ये जो श्लोक दिया हुआ है उसका मैं फिर से एक बार आपको, तो आप फिर उस श्लोक पर या और किसी पर एक उसका मैं सिर्फ अर्थ ही आपको बतलाऊंगा। ये 50वां जो श्लोक है, जिस प्रकार एक अंधा पुरुष न देख सकने के कारण दूसरे अंधे को अपना नायक नेता मान लेता है, उसी तरह जो लोग जीवन लक्ष्य को नहीं जानते वे किसी न किसी धूर्त तथा मूर्ख को अपना गुरु बना लेते हैं। मतलब हमें जीवन लक्ष्य पता होना चाहिए, किंतु हमारा लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः हम आपको अपना गुरु स्वीकार करते हैं क्योंकि आप सभी दिशाओं में देखने में समर्थ हैं और सूर्य की तरह सर्वज्ञ हैं। तो किसी भी तरह का जिज्ञासा है नहीं, कोई कमेंट भी हो, मतलब मैंने जो कहा उस पर बारे में और उसे आगे बढ़ाने के लिए, उस बात की पुष्टि के लिए कुछ आपको बतलाना हो तो आप बतलाइए। आप गुरु तत्व को समझ गए हो कि गुरु कौन है, भगवान को भी गुरु बना सकते हैं पर हमें संसारिक गुरु चाहिए, वो जरूरी है। पर यदि आप इतने शुद्ध हैं तो ये संभव है कि आप भगवान को डायरेक्ट, जैसे चैतन्य चरितमृत में दिया हुआ है, आप भगवान भगवान नाम का आश्रय लेकर के भी संसार सागर से पार हो सकते हैं। पर हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए पथ प्रदर्शक होना जरूरी है, कैप्टन होना जरूरी है जो हमारी नाव को ठीक से खे करके भगवत धाम की ओर ले जाए। जय ग्रंथराज भागवताम की जय। और भक्त वृंद की जय। बड़ी खुशी हुई आप सब लोगों से मिल करके, क्या साल भर पहले मैं आया था यहाँ, अब एक साल हो चुका, आप सब भक्तों की कृपा ही मुझे खींच लाई है।